من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم.
حضور کا بیان کرواتا ہے، یہ بھی کوئی شان کے قاسم کے رضائل میں سے اور قاسم کی اور روح کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک انسان ظاہر و باطن کے جن جن گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور جن جن غفلتوں سے دوچار ہوتا ہے، کیا یہی غرور اور سے مرادت ہوگا؟ جس انسان کی ظاہر و باطن کی اطلاع نہیں ہوتی ہے اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی شمع روشن نہیں ہوتی ہے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق، تو وہ نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے، دنیا کے دھوکے کا سامان ہے، نفس بھی بڑا دھوکے باز ہے، شیطان بھی بڑا دھوکے باز ہے، نہ تو شیطان انسان کو وسائل کے ذریعے، خطرات کے ذریعے، طرح طرح کے خیالات کے ذریعے اور دھوکے میں آ کر کے ان کے کہنے پر عمل کر لیتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو لفظ بھی چھٹا کا جواب دے دیتا ہے، شیطان بھی سوتے کی طرح آگے پھیر لیتا ہے، جیسا زندہ تھا اس وقت تک تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور سب بات بلاتے رہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، ایسا مزہ آئے گا، اس طرح مزہ آئے گا، موج ہوگی، بڑائی ہوگی، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، یہ کر لو اس میں بڑا مزہ آئے گا، بڑا فائدہ ہوگا، ایک دن مرنا ہی ہے، لوگ اگر مزے کر لو گے تو کیا ہوگا، کر لو جو کچھ کرنا ہے، زندگی بہت پڑی ہے، خوب کھا لو، خوب کما لو، خوب پہن لو، دیکھیں گے جو کچھ ہوگا آپ کو کر لو، اب میں کل بھی ہے یا نہیں ہے، تو نفس بھی اور شیطان بھی اس طرح سے انسان کو باتیں سجھاتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، دل میں ان کے خیالات کو کافی ڈالتے رہتے ہیں، لیکن جب آدمی کا انتقال کا وقت قریب ہے تب اس سے الگ ہو جاتے ہیں، انسان اکیلے رہ جاتا ہے، نفس بھی انسان کے لیے بڑا دھوکے باز ہے اور شیطان بھی بڑا دھوکے باز، और इसी तरह दुनिया की जिंदगी और दुनिया ये भी धोखे का नाम लोग यही खाता है, ये समझता है कि अभी तो मैं बहुत जिंदा रहूंगा, अभी तो मेरी समझ ही क्या है, अभी मैंने क्या कमाया, क्या खाया, क्या कमाया, अभी तो मैंने दुनिया देखी ही नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी को तवील समझ कर इंसान अल्लाह देता है, गुनाहों में, अय्याशी में, बदमाशी में, फहाशी में, गफलत में, लापरवाही में, नमाज न पढ़ने में, नजर की हिफाजत न करने में, गाना सुनने में, नाच गाना देखने में, फिल्में देखने में, और तरह तरह की गुनाहों के अंदर इंसान अपने आप को मुबतला कर लेता है। तो ये समस्या जब रोज चाहता है कि भाई अब गुनाह नहीं करूंगा। जब गुनाहों का बाजार और गुनाहों के पास से गुजरता है तो फिर गुनाह में मुबतला हो जाता। रोज चाहता है कि मैं अपनी निगाह नहीं करूंगा, लेकिन जब नाजायज मनाजिर सामने आते हैं है कि अब के मतलब मैं इस गुनाह से दूर रहूंगा, ऐसा मैं गुनाह नहीं करूंगा, लेकिन जब वो गुनाह का मौका आता है न तो शैतान और जिंदगी से धोखा खा कर फिर गुनाह में फल बैठता है। इस तरह गुनाह करता रहता है और इसी अलग मौत है। इंसान की जो जिंदगी है ये भी इंसान को धो गया, मैं वो क्षमा कर देती हूँ। और कुछ दुनिया भी ऐसी ये दुनिया जिससे हम रहते हैं सब जानते हैं कि आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है। आखिरत के मुकाबले में से कोई हकीकत ही नहीं है। हमें कोई मुआवजा है, चलो भाई दुनिया की किसी अदना नियमत से बढ़ जाए या ना बढ़े तो कम से कम बराबर ही हो जाए, है ही नहीं कुछ। सारी दुनिया मिलकर देवी जन्नत की किसी अदना नियमत से बराबर नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया ऐसी ये हकीकत है कि मक्खी और मच्छर के फर के बराबर भी नहीं है। इस दुनिया की अल्लाह ताला के यहाँ किसी की कदर मंजरत होती तो दुनिया में अल्लाह पाक किसी काफिर को एक घूंट पानी न देते, एक लुकमा खाने को न देते, एक जोड़ा पहनने को न देते। लेकिन चूंकि बाकी दुनिया भी जितने तक खत्म नहीं करते सारी जिंदगी उसकी तंगी ना गुजरी तो जितना आता फरमा दीजिए कि हाँ अभी पिछली भी कसर निकल जाए और आइंदा भी उठा भी नसीब रहे तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा आता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल है और अब हमने उसको बहुत दे दिया। ये आदमी का घर बड़े खुश हुए कि भाई हाथों हाथ दुआ कबूल हो गई और उसका हाल तुम्हें सुना हुआ था इसलिए हालत को और ज्यादा खुशी हुई कि भाई उसकी संगत से हमें निकालना दूर हो गई और वो आके इतने आ गया खुशहाली उसका नसीब हो गया। के बाबत होते जो रास्ते में उसका घर था सोचे लाओ मैं इसको भी खिला देकर जाऊँ उसका भी बना दूँ क्या समर कर ले खाने पीने के लिए तैयार हो जाए हम भी खाना खिलाने वाले चावल की भोजी बदलने वाली है गुरु मटंजन पकने वाला है खाने पीने की बाहर आने वाली है तैयार हो जाऊँ घर गए दरवाजे पर दस्तक दी तो दस्तक देने के बाद अंदर से उसका जवान बेटा बाहर निकला अभी कल के बाद में दुआ करा के आ रहा हूँ तो दुआ भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और अभी कह रहा है मेरे पास अभी दिखा दो इसलिए अल्लाह ताला से अभी करवा दिया जा रहा है। मैं तो बड़ा खुद खुश होता था कि अब जा रहा हूँ जो सुनाऊंगा कि भाई अब फिर कुछ आगे के दिन आने वाले हैं खुश हो जाए बेचारा मिस्त्री ने खुद ही जा रहा खुशहाली क्या करेगी क्या और वो क्या जिंदगी गुजारे खुशहाली के अंदर वो खुद ही मर गया बेचारा नहीं क्या मांग रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अनोखा ये बताओ कि हमने तुमसे क्या सवाल किया था और तुमने उसे क्या जवाब दिया था। अनोखा सलाम लड़के पर यार आपने पूछा था कि थोड़ा दे या ज्यादा दे मैंने अल क्या था कि ज्यादा दे दी और तुमने ये कहा था ज्यादा दे दे ये बताओ अगर हम उसको दुनिया देते तो क्या ज्यादा देते दुनिया तो सारी भी देते थे तो ज्यादा ना देते तुम्हें सारी दुनिया मिलकर भी मच्छर के सिर के बराबर है तुमने कहा तो ज्यादा देते तो क्या दुनिया देते हैं मुझे अगर आप दुनिया देते तो ज्यादा देने वाले कहाँ के लगे तुमने कहा तो ज्यादा देते तो मैंने उसको आखिर में बुरा से जन्नत दी तो जन्नत हो तो क्या सकता हो क्या ज्यादा दी दुनिया दे तो क्या दी तो कुछ भी दुनिया से बदल से आज बेहतर चीज अल्लाह आखिरत अता फरमा दी आखिरत में जन्नत अता फरमा दी अपनी रजा अता फरमा दी और अपनी खुशनौदी है अल्लाह पाक ने उसको मालामाल फरमा दी। तो ये दुनिया जो है ये भी आखिरत के मुकाबले आखिरत के मुकाबले कुछ भी नहीं जो कुछ भी नहीं इसके बावजूद जनाब इससे इंसान को खा जाए दुनिया के सोना है चांदी है रुपया है पैसा है डॉलर है रियाल है सिक्के हैं हीरे हैं जवान है मकान है प्लाट है खेत है मार्केटें हैं बड़े बड़े स्टोर हैं ये सारी चीजें अखीर के अतबार से तो बिल्कुल बेअसर है लेकिन इंसान के दिल में कितनी इनकी कदर कीमत है कीमत से धोखा खा करके इंसान कितने बड़े बड़े गुनाहों में मुबतला होता है चोरी भी करता है कम भी तोड़ता है कम भी नापता है मिलावट भी करता है धोखा भी देता है गाड़ी क्रोध भी करता है लड़ाई झगड़ा भी करता है तरह तल्लुकी भी करता है बायकाट भी करता है रफीरानदोजी भी करता है कितने सारे गुनाह इस माल की लाइन में करता है इसी दुनिया के अंदर जनाब दोस्त बाकी तो कितने ही गुना इंसान अपने यार दोस्तों की मोहब्बत में करता है यार दोस्तों के दाढ़ी मुंडाते यार उन्हें देखा देखी ये भी दाढ़ी मुंडाता तो पैंट लोन पहनते उनके देखे देखी ये भी पैंट लोन पहनता वो अपनी सलवार और सहमत और पजामे को टखने से नीचे रखते ये भी अपने सलवार टखने से नीचे रखते हैं इसलिए सारे दोस्त नीचे रखते हैं अगर मैं ऊपर रखूँ सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे दोस्तों की वजह से वो चूंकि फिल्में देखते हैं गाने गाते हैं ज्यादा ये भी गाने गाता है और फिल्में देखता है जिसके नतीजे में जना भी उनकी वजह से ये भी तरह तरह गुनाहों में मुबतला हो जाता है। वो चूंकि रात को देर तक तकरी करते हैं और घूमते फिरते ज्यादा जैसे उनके साथ ये भी जाता है तो जैसे वो फजर की नमाज सजा करते हैं ये फजर की नमाज सजा पड़ता है। आखिरी बात में खानदान बिरादरी वाले दोस्त आबाब अजीज अकारीब होते हैं, दोस्त आबाब होते हैं उनकी वजह से उस तकलीफ के अंदर हमारा दो तीन बच जाते हैं जिसकी वजह से फजर की नमाज सजा। उस तकलीफ के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब होता है वो महल देखा देखी एक दूसरे से ताल्लुक की दुनिया पर गवारा किया जाता है। हमारी बिरादरी भी आगे कर रहे हैं, खानदान वाले जमा है, दोस्त अहबाब है, ये सब मूवी बना रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं और इस मकबूल इज्तम हो रहा है, लिहाजा बहुत ये भी नहीं चलता कि चलो उनसे अलग हो जाए अलग नहीं। और जनाब दिल से बुराई महसूस कर रहा है इसके बावजूद आही ना आही उन गुनाहों के अंदर शरीक हो जाता है, उस तकलीफ के अंदर शामिल रहता है। किसी का इंतकाल हो जाए तो अपनी कौम की वजह से, अपनी बिरादरी की वजह से, खानदान की वजह से, तरह तरह से कि बिदआत में रुसूमात के अंदर मुबतला होता है। ये सब दुनिया है जिसकी वजह से दो खा रहा है इंसान, जबकि इनके कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं। तो दुनिया के पैसों का, दुनिया की दौलत का, दुनिया के सोने का, दुनिया की चांदी का, दुनिया के रहने वालों का कोई हाल नहीं है, कोई हैसियत नहीं है आखिर के मुकाबले। लेकिन इंसान अल्लाह बचाए इन ताल्लुकात से धोखा खाता है, खानदान वालों से धोखा खाता है, बिरादरी वालों से धोखा खाता है, अपने यार दोस्तों से धोखा खाता है, अपने रिश्तेदार से धोखा खाता है, मेरे भाइयों से धोखा खाता है, अभी अखाड़ी से धोखा खाता है, धोखा खा करके अपनी आखिरत को फरामोश करता है और दुनिया की धूमधाम को, चमक दमक को देख करके बस बुरे बुरे गुनाहों के अंदर मुबतला हो जाता है। ये धोखा, ये गुरूर। हमारे लोगों ने कहा कि गुरूर एक ऐसी बुरी बला है कि जो इसमें मुबतला है तो बस समझो हर गुनाह में मुबतला है। और अल्लाह पाक जिसके धोखे से नशे निकालते तो फिर उसकी शान यह है, उसका हाल यह है कि ना उसको भी बच्चे अल्लाह के हुक्म से हटा सकते हैं, न यहाँ झूठ उसको दुनिया का सोना, न दुनिया की शांति, न दुनिया की हुकूमत, न किसी का खौफ उसको अल्लाह के हुक्म से। निकल जाए गुरूर हमारे अंदर से जाता रहे तो समझो कि 100% बिदला हो जाए इंशाल्लाह। नाम मुझे सब पूरी तरह याद नहीं आ रहा, ये बुजुर्ग है बामल भी है और समाने जब आकर दुनिया में इस्लामी हुकूमत है तो ये एक दरियाई किनारे टहल रहे थे, वहाँ क्या देखते हैं कि किनारे पर आकर के एक किश्ती लगी और उसमें से शराब के मद के लोगों ने उठा उठाकर किनारे पर रखे और तकरीबन 10 बच्चे उन्होंने वहां पर रख दिए। सबसे पहले तो इनको ये हैरानी हुई कि कितना ही हुकूमत में शराब खाते हैं कैसे अभी खोल दिया है, कितना ही हुकूमत में तो शराब हरा वहाँ पर शराब रखे कोई तस्वुर नहीं हो सकता। अगर सही खिलाड़ी हो तो वो खाए लो, ऐसी नौ जगह आजकल की हुकूमत है कि जो इस्लामी हुकूमत है नहीं, मुसलमानों की हुकूमत है, और मुसलमान नहीं हुआ तो नाम के मुसलमान। इस्लामी हुकूमत में तो तस्वुर ही नहीं हो सकता शराब नौकरी का, शराब मनाने का, शराब बेचने का। इसलिए सबसे पहले तो उनको इस बात पर हैरत हुई कि यहाँ पर शराब आई कैसे, बनी कैसे, आई कैसे थी। आगे बढ़े और सिक्की वालों ने पूछा कि ये शराब किसकी है, किसके वास्ते डाली गई, पूरा खलीफा की भी डाली गई। तो मुझे ख्याल हो रहा था कि शराब जो है इस्लामी हुकूमत में आई कैसे, और अब ये मालूम हुआ कि खलीफा के लिए फास्टा है उसके लिए आई है। अब तो सुनते हैं उनको बात है कि जिस खलीफा का फर्ज है जो अपनी ममलकत से शराब का नाम और निशान लिखा है, वो ये खलीफा अपने वास्ते शराब मंगवा रहा है। यार सुनती बहुत जोर से गुस्सा आया, उन्होंने जनाब अपना आधार लिया और जनाब ठीक है बात, इधर हेट मटके को खोलना शुरू कर दी। हेट मटके में मारा वो टूट गया, दूसरे मारा वो टूट गया, तीसरा चौथा पांचवा नवे में जाके रुके, नौ मटके तोड़ दिए और शराब वहीं बहकर के गलिया में चली, दसवा मटका तोड़ दिया। क्योंकि मुलाजिम थे खलीफा के, फौरन उन्होंने जाकर बादशाह को इसके दी कि जनाब एक शक है इस तरीके से आपकी शराब दरिया है बाहर। फौरन जिस साली का हुक्म दे दी और ये गिरफ्तार जिस साली में दे दी और गिरफ्तार होकर के बादशाह के सामने अदालत में पेश कर दी जाए। मेरा ख्याल है अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वालों का दिल अल्लाह ताला मजबूत रखते हैं, अल्लाह करने की मदद से वो किसी बादशाह की सामने भी हर बात कहने से बाद में आगे क्या जान कर लिया। जब ये बादशाह के सामने पेश हुए तो बादशाह का खूब भारत धर्म का था, वो खूब भारत धर्म का था कि इससे उसकी आंखें बड़ी लाल लाल होती तो रखता है शराब नोशी कसरत की वजह से ऐसी होती, और फिर वो एक होग नाम जानवर का बना हुआ खोल अपने चेहरे में पहनता था, दो तीन निकले हुए हैं डरावनी शक्ल बनी हुई है वो अपने चेहरे पे चढ़ा के और डरावनी शक्ल बना करके दरबार में बैठता था। तो उसने वही अपनी होगनाक शक्ल बना रखी थी, किसी बदलाव होगनाक शक्ल से शक्ल में उसने उसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, हाँ जी मेरा नाम तो अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला तो सारे ही असल नाम बताओ तुम्हारा क्या नाम, नाम बताया इससे कौन से बच्चे तोड़े, उसके हुक्म से तुझ पर भी हासिल अल्लाह। अच्छा ये कहा ना तो उसके अंदर ही अंदर किसका खामी हो गया, हाँ तो मुसलमान ना उसको कौन याद आ गया कि मैं महफूज हूँ अल्लाह ताला मेरे हाथ में, और उसी बात का दिल पर एक आकर हुआ कि एकदम क्या कहते हैं अंदर ही अंदर उसका गुस्सा जो है वो पानी काफूर हो गया। अगर तुमने ना जो तुमने तोड़ा है तो फिर तुमने दस क्यों नहीं तोड़े, नौ क्यों तोड़े, एक क्यों बजाए। हाँ बोले ये इस वक्त मुझे ये आपके मुलाजमीन ने बताया कि ये शराब के मक्के खलीफा के लिए लाए गए हैं, तो सुनते ही मुझको अल्लाह के वास्ते गुस्सा आया, तो गुस्से में मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस मटके तोड़ कर लगे, नौ मटके जब मैं तोड़ डाला तो मुझे ख्याल आया कि बादशाह क्या समझ गया, जो बड़ा बहादुर आदमी खाली भाई शराब पा रहे थे, थोड़ा खौफ ना आया कि बादशाह क्या सुधार देगा क्या नहीं सुधार देगा, बस इसी ख्याल आया। उसके बाद मैंने अपनी लाठी को रोक दिया, अगर मैंने दसवा मटका तोड़ा तो हारी अल्लाह के लिए तोड़ लगा होगा और ये कुछ अपने भाग में भी दिखाने के लिए होगा, और अल्लाह ताला क्या तो खाली अमल मखलूक होता है, मखलूक अमल अल्लाह ताला के मखलूक नहीं होता। मैंने वही लाठी रोक ली कि अभी तोड़ना अल्लाह के लिए नहीं होगा, खलीफा के साथ में अपने भाग भी दिखाने के लिए होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये जवाब अल्लाह को जनाब बादशाह गैर उसके शहरों में गिर गया। साल पहले की जैसी है। तो इन कारण इसमें चले गए और बाहर से जो चीजें अंदर आने के रास्ते हैं, तेरी आंखें हैं, तेरे कान है, तेरी नाक है, तेरा मुंह है, तेरे हालत, इन रास्तों से तेरी मतलब चीजें अंदर आती है। जिसने मनाजिर उसको पता लाते आओं के जरिए उनकी लज्जत अंदर जाए। जिसने नस्तानी शामानी बातें तेरे कान सुनते हैं, वो कानों के जरिए से वो आवाजें तेरे दिल में उतरती है और तू अंदर से उनसे लुत्फंदोज होता है। ये बाहर जाते बदरिया कान जितने खाने की पीने की लजीज लजीज चीज है, चाहे वो आरामी हो, जो तू अपने जुबान के जायके के जरिए अपने पेश में उतारता है, बाहर से आती है जुबान के जरिए अंदर उतरती है। जरा जी कड़वी हो बड़बड़ा तो तू देता है, जितनी लजीज हो और जितनी मजेदार हो बस थोड़ा तू नीचे उतारता है। सोने के जरिए, जाय के जरिए, हाथों के जरिए पकड़ करके, पैरों के जरिए चल करके, तो कितनी अपने मन पसंद चीजें अपने इन जराय से इन रास्तों से अपने अंदर दाखिल करता है। अफसोस भी तो अपने अंदर कांडों का मामला है, क्षमा रोशन नहीं जो जड़ है सारी नियमतों की, सारी राहतों की, सारी आदेशों, सारी सलाखों की। जब मौत के दुश्मन में आकर के तेरी आंखें बेकार कर दी, तेरे कांटे बेकार कर दिए, तेरी जुबान भी बेकार कर दी, तेरे हाथ पैर बेकार कर दिए, तेरे पेट को भी फेल कर दिया, तेरे पैर भी फेल हो गए। अब अकेल से अकेल शक्ल तेरे आंखों के सामने मुझे तेरी आंखें देखने खा दी। गुलाब का फूल नाचियों में रखा हुआ है मगर नाचों होने से आंखें देखे, और मैं बिरयानी का लुकमा तेरे मोहर से रखा हुआ है मगर होटल में जान नहीं है कि उसको चबा ले और अंदर लेकर के निकल। अब तेरे सारे महबूब तेरे कान के अंदर तेरे से मोहब्बत की बातें कर रहे हैं लेकिन उनकी बातें तेरे कान सुनने से आती है। और कितनी चीजें बाहर से आती थी तो सब बंद हो गई। मौत ने ऐसा फासला कर लिया तेरा कि वो सब कुछ अंदर जाने से अंदर आमान साला की कोई चीज खास क्षमा नहीं। अल्लाह तला की मोहब्बत तेरे दिल में नहीं, अल्लाह तला की साल का इंतजाम तेरे पास नहीं। जैसे वो किले वाले तेरे नजर लगा के खत्म, क्योंकि अंदर इंतजाम नहीं था, आज तेरे दिल के अंदर कोई इंतजाम नहीं है। तो अब मरते ही अब तेरे लिए सिवाय आजाद कुछ नहीं, तुमने अंदर कुछ इंतजाम नहीं दिया। बस जब तक जिंदा रहा बस नस की ख्वाहिशात ही की पैरवी करता रहा, पेट की कहावत, कानों की कहावत, हाथ पैर की लज्जत नाजायज तरीके से हासिल करने में मस्त रहा। अंदर को न कोई अल्लाह ताला की ताल्लुक को कायम और दायम नहीं ना किया, वो भी है कि जब मौत आई तो अब रात अंदर भी मौत आई, जिसमें कोई मौत आ गई और आखिरत के अंदर भी सिवाय मौत की कुछ नहीं। पहले से अपनी जिंदगी के अंदर इन जरा से जो कुछ आता है उस वहां से हराम आने को रोकता, नाजायज उमूर के आने देखने सुनने बोलने चखने खाने पीने से बचता, तो फिर तू अंदर का इंतजाम करता। तो करता तो जब मौत का दुश्मन आकर के तुझको अखरत से मौत का तो बेकार करता, तो ये तरह अल्लाह ताला के ताल्लुक और ये आखिरत की तैयारी का सामान ये तरह आखिरत में काम। जैसे वो किले वाले अगर पहले से अंदर अपने फराब का इंतजाम करते तो दुश्मन का फासला उनके लिए मुजिर ना हो। आज हम अपने हाथों को अपने पैर को अपने जिस्म को अपने हाथों को अपने कानों को अपने जुबान को अपनी आंखों को गलत इस्तेमाल कर करके हम धोखा खा रहे हैं। मौत आएगी उसके बाद पता चलेगा कि वहां धोखा ये है। दरअसल अल्लाह पाक ने इस धोखे से बचने के लिए अल्लाह कमल हयात दुनिया अल्लाह बताओ गुरु दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान। मजबूत साफ फरमाते हैं नदियों के जमाने की न जाना है दिल, नदियों के जमाने की न जाना है दिल, ये खिला है ये पान का आगे बाहर आएगी। इन्हें दुनिया हबीब के दरबार से बिल्कुल बेहतर बेहतर है। इन्हें अल्लाह के रसूल ने जरूर फरमाया वो अटल है, हमारी समझ में आए या ना आए, हमारी असल में आए या ना आए, हम माने या ना माने, लेकिन इसके बावजूद दुनिया का रुपया, पैसा, दौलत, दुनिया की चीजें ये ऐसी भले मालूम होती हैं, बहुत उम्दा और कीमती मालूम होती हैं, जिसके नतीजे में इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाता है और इनको जिंदगी का मकसद बना करके नमाजें छोड़ देता है, रोजे छोड़ देता है, हज को छोड़ देता है और बड़े बड़े गुनाहों से इनका गर्क हो जाता है। अच्छा समझने के लिए अगर अच्छा ना समझता तो कहाँ गुनाह में मुब्तला होता, ना समझता तो कहा मुबतला होता है। अच्छा समझ में ही क्यों तो मुबतला हुआ, ये अच्छा समझ में ही दुनिया में धोखा खाता है। ना ना तो उसके भी आ गया तो जो समझ से गुजरे तो ऐसा पहला भूल भूले रहा से इकदार के दिन के हिसाब में ना लगाना दिल को बाहर दुनिया तो बड़ी सबक दबक मालूम हो रही है, दुनिया का जिला अहसास मौसम खुदा आता है तो मौत में बाहर जाता है, जिला इंसान की जिंदगी के लिए मौसम बाहर खत्म होने वाला है और मौसम में खुदा यानी मौत आने वाली, मौत आएगी जिंदगी की सारी बाहरें खत्म हो जाएगी। अभी दिन आता है जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो तीन चीजें कब्रस्तान उसके साथ आती है, कब्र में तीन चीजें उसके साथ जाती है, दो वापस आ जाती है, एक साथ चली जाती है। एक तो इंसान के साथ उसका माल जाता है, दूसरे उसके घर वाले उसके साथ जाते हैं, तीसरे उसके आमाल उसके साथ जाते हैं। कब्रस्तान में जाकर उसको दफनाकर माल भी वापस आ जाता है, घर वाले भी वापस आ जाते हैं, सारे घर वाले बस उसकी मिट्टी दे करके सारे दोस्त अहबाब अकारिब उसकी मिट्टी में शरीक होकर के समझते हैं कि हमने इसका आखिरी हक जो बाकी था वो भी अदा कर दिया। डॉक्टर का शेर है, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिरा ये दे गए, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिरा ये दे गए, दोस्त और आबाब आकर मुझको मिट्टी दे गए। और माल का ऐसा व्यवहार को मिट्टी भी नहीं देता, जिसको सबसे ज्यादा आदमी कुर्बान होता है, जिसके लिए सबसे बड़कर कुर्बानी देता है, दुनिया के एतबार से भी और अल्लाह बचा नमाज़ दीनी एतबार से भी, यानी नमाजे भी कुर्बान करता है, सबसे ज्यादा माल के साथ हज भी कुर्बान करता है, रोजे भी कुर्बान करता है, ज़कात भी कुर्बान करता है माल के साथ, और माल ही के खातिर सूद भी खाता है, रिश्वत भी लेता है, चोरी भी करता है, डाका भी डालता है, कम तोड़ता है, कम नापता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, सारे काम करता है माल के खातिर। इससे कम अपने बहन भाई, अपने भी बच्चों, अपने बहन भाई दोस्त अहबाब वालदे अजीज अकारिब के खातिर इंसान ये काम करता है, और हाल ये है कि माल भी वापस आ जाता है, वो मिट्टी नहीं देता इंसान को, अजीज अकारिब दोस्त अहबाब भी चाहे कितने गहरे दोस्त हो वो भी आखिर मिट्टी दे करके कब्र तैयार होकर के वो भी वापस आ जाता है, कब्र उसके साथ जाते हैं माल जिनका ख्याल ही नहीं किया जिंदगी इंदा, जो साथ जाने वाली चीज थी उसका तो ख्याल ही नहीं किया, और जो वापस आने वाली चीज थी उनसे कुर्बान होगी, तो मौत जब आएगी तो वो तो सारी जिंदगी की बाहर खत्म कर देगी, वो मारे दौलत भी तो कई जगह रखा कर खा देगी, और दो साहबा से सारे के सारे कबर में उतार कर वापस चले गए। अब उसके अमाल उसके साथ हैं, अच्छे अमाल किए होंगे तो वो काम आएंगे, बुरे अमाल किए होंगे तो सवाल होने का। लगाना दिल को बाहर से एक बहुत शेर बड़ा प्यारा याद आ गया, ये चमन वीरान भी होगा ये खबर खुल खुल कर दो, ये चमन वीरान भी होगा ये खबर खुल खुल कर दो, ஆச்சமான வீடா ரொம்ப ஏக போல பொருட்கள் காசி அப்படி இருந்து போஸ்டர் கொடுப்பாங்க. போஸ்டர் கொடுப்பாங்க துணியா ரெண்டு குர்பான் கட்டணி ஹரியான اپنی اصلاح پر تربیت پر اپنے اچھے اچھے اخلاق کو اعمال کو سنوارنے پر شریعت کی دائرہ داری کرنے پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع دار فرما بردار بندہ بنانے پر. اس لیے جو دنیا کا دھوکا نہیں کھائے گا وہ تو اللہ اس کے رسول پر سیدھا ہو جائے گا. مجھے تو دنیا کی قربان کر رہی ہے چلے جا رہے تھے. اللہ کے نیک بندوں کا ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں یا چل رہے ہوں یا آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں ان کا دل اللہ تعالیٰ سے متعلق رہتا ہے اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خاص اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی یاد میں اس کے خیالات میں دن رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے تو خیر نصیب فرما جاری مانگنی چاہیے کیونکہ حدیث میں اللہ عمد البخاری کے قلبی خشیت کا وجہ کے لگا وجہ الہمت بھی بھاوایا یہ بات پتی تو ہوتا رہا یہ دعا بھی بات پتی جاتے جاتے دل دل میں بات کرنے لگے کہ اللہ آپ کی کیا قیمت آپ کی کیا قیمت ہے کتنی قیمت کام لیتے ہیں فرمایا کہ دو نا عالم دے دو اور مجھے دے دو دونوں آلہ مجھے دے دو اور مجھے دے دو یعنی دنیا میں اس دنیا کے مجھ سے قربان کر دو آپ سب سے مجھ سے قربان کر دو اور مجھے دے دو میری قیمت دونوں جہاں تم گرو نے کہا قیمت گفت ہر دو آلہ گفت ہے آپ نے دونوں آلہ اپنی قیمت بتلائی ہے جس بادہ تم کیا ارضا نہیں ہونا اس کی قیمت کچھ بڑھائی ہے آپ نے تو دور سستا کر دیا اپنے قیمت خود ہر دو آدم کو صحیح قیمت خود ہر دو آدم کو صحیح یہ زبان سن کیا گانی سنو ان کی یہ باتیں ہم ایک لاکھ روپے سے بولے وہ دو لاکھ کا بنائیں گے ویسے تو ہونے سکتے آج کی بھی یہ بات نہیں آ جائے کتنا فرق دنیا کا دھوکہ دینے والا یہ کاٹنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور جس کے دل دھوکے سے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے میں دھوکے سے پاک اللہ کے بلی کا شیر یہ ہے کہ میں شبد نصیب دشم کہ شبد حالات سے تیرے دوست خان سلامت سے جو ہم جرا دوں آئے میں شبد نصیب دشمن کے شبد حالات سے تیرے کسی دشمن کو بھی یہ بات نصیب نہ ہو کہ یا اللہ محبوب کے ہاتھ سے وہ قتل کرے کسی دشمن کو بھی ایسے نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے وہ قتل ہو اپنے دوست کا سلامت سے وہ خنجر آزمائے. اگر آپ کو اپنے خنجر کو آزمانا ہے کہ ڈھال ٹھیک ہے یا نہیں یہ غلام حاضر ہیں ان کی گردنیں کتنی ہیں ان کے تلاشی دیکھ لیجیے کہ تلوار صحیح کام کرتی ہے ان کے مہاراج جی دنیا جو ہے اس کو بھی فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے یہ دھوئے تو کام آتا ہے ضرورت نہیں گا اور حدیث شریف ہے اس کا بہن فرمایا تو جاتی دار الغرور سے دور رہو دار الغرور ہے دنیا دنیا دھویا کر ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اس سے دور رہو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دل مت لگاؤ جیسے ایک ہے اور ایک کے لیے ہے کسی کے دل میں کسی کے جسم میں دو دل نہیں ہے ایک ہے بس وہ صحیح چیز ہے جب تم اسے ایک کے لیے کر لو گے تو ایک آ جائے گی اور جب تک ایک کے لیے خالی نظروں میں اس وقت تک ایک نہیں آئے हमने शरीर धोखे से पाक हो जाता है, दुनिया के धोखे से पाक हो जाता है, फिर अल्लाह पाक उसके दिल में आ जाता है। तो दिल में तो आता है सर, अपना नहीं आता मालूम हुआ तेरी पहचान गई। तो दिल में तो आता है पर अकल में नहीं आता मालूम और तेरी पहचान ले। बहरहाल इंसान का लक्ष्य और ये दुनिया और शैतान ये तीन चीजें जो है इंसान को धोखे में डालती है, और इनकी वजह से इंसान धोखे में आकर के न जाने कितने कितने गुनाह करता है और कैसे कैसे गुनाह में फसला होता है और कैसे कैसे फसलों के अंदर का शिकार होता है। हजरत ने आखिरी फसल में इसके ऊपर मतलब से फरमाया है और आखिर में उसका इलाज साथ फरमाया है। इलाज ये फरमाया है बात मैं कर रहा हूँ इस जगह जगह नहीं फरमाई है, दूसरी जगह हम बयान फरमा चुके हैं और हमारे खातिर रहने का उसकी तकीब करते रहे हैं। इंसान नफ्स शैतान से और दुनिया के धोखे से बचने के लिए सबसे पहले जिसे अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करे, जितने रजाइल हैं उनके खिजाने या पैमाने के लिए और जितने फजाइल हैं उनके पैदा करने के लिए असल वसूल ये असल फायदा असल तरीका ये कि किसी ने किसी अल्लाह वाले से उसका मुख निकाला ताल्लुक हो और उससे उसका खूबी रास्ता होना जरूरी है। आखिर अपने रास्ते का तो आखिर आवाज है, किसी बुजुर्ग में जिसमें चले गए वहाँ पर आदमी दे ली यहाँ पर बैठ गए, ये भी नाते हैं, ये भी मुफीद है, ये भी नतीजा खाली नहीं है। इससे आदमी की मुकम्मल इतना होती है जो मकसूद असली है वो उससे हासिल नहीं होता, यानी मकसूद असली जो के अकल पूरा जिसको हासिल करना चाहिए वो पूरा हासिल नहीं होता। ताल्लुक के साथ हर आदमी सुधूरे ताल्लुक भी कायम रखते हैं, जिसमें दो बातें होती हैं, एक तो ये कि अपना जो भी हाल हो शहरी तौर पर ये टेलीफोन के जरिए जो औकात उसको बताए गए उसमें अपना रास्ता अपने मुर्शिद से रखे, और दूसरा ये कोई ऐसा वक्त रखे कि जिसमें जाकर के वो अपने मुर्शिद के साथ हाजिर बैठे रखे, न वहाँ पे कोई बुजुर्ग हो न कोई वाज हो न कोई तकरीर हो न कोई बयान हो कुछ ना हो, बस खाली बैठे अल्लाह का बैठने के अंदर भी अजीब गरीब ताकि जिनका फायदा खजरने से मालूम हो सकता है बताने खाए लिखना मालूम नहीं। हमारे रहमत लाने की एक मजलिस तो बाकायदा इतवार को गालिब साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह तक होती थी, उसमें शहर से लोग आते थे और हजरत बयान भरवा थे और उसको बड़ा लगा होता था, और एक हजरत की अखीर उम्र में फजर के बाद खामोश मजलिस होती थी उसमें कोई बयान नहीं होता। मैं खुद को दिला देखो खास खास हजरत के मुतालिकीन फजर की नमाज में हाजिर होते और फजर की नमाज के बाद हजरत के पास हजरत के कमरे में हाजिर हो जाते, हजरत अपने बिस्तर पर कभी बैठे होते कभी लेटे होते और हजरत अपने खामोश और जना दिए इस्तेफादा करने वाले भी खामोश, हजरत अपने जिक्र में मशगूल है, कभी कभी हजरत ने कोई जिक्र में कलमा जोर से बोल दिया तो जरा सा बाजी गरीब उसका असर महसूस तो हजरत भी खामोश और जो बैठने वाले हो खामोश इस मजीद से देखने वाले अच्छी माशाल्लाह कुछ हजरात मौजूद है तो खुद भी कहते थे और आज भी जिन हजरात ने उस मजलिस से खाजा उठाया वो कहते हैं कि वो जो इतवार की मजलिस होती थी जिसमें बाकी का बयान होता था उससे कहीं ज्यादा इसमें फायदा होता है। असल में दिल से मिलता है और दिल की बातें दिल में आती है, जुबान की बातें जुबान तक या आज तक, और कोई अल्लाह वाला हो तो भी उसकी दिल तक भी बातें आकर पहुंचता है। लेकिन जो दिल के खाते दिल मिलाने के लिए बैठता है तो भाई उसका तो फिर दिल में असर होता है और असर वही असर है दिल के अंदर हो तो वो सोबत से आते مکمل فائدہ ہوتا ہی نہیں, کیونکہ اس بات نے اس کے فائدہ کے اندر اور باطنی نفع کے اندر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شہر کا مزاج و مذاق اپنے اندر پیدا کرے, اور مزاج و مذاق جو ہے وہ باتوں سے پیدا نہیں ہوتا, مالوں سے اور تقریروں سے پیدا نہیں ہوتا, یہ تو صرف اور صرف مخلصانہ ہم نشینی سے پیدا ہوتا ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے خدمت و صحبت میں آدمی جا کر بیٹھے, بس چاہے پانچ منٹ بیٹھے چاہے دس منٹ بیٹھے, بس اس بیٹھنے سے انسان کی دل میں اس کا اثر ہوتا ہے, اور دھیرے دھیرے شہر کا مزاج شہر کا مزاج اس کے اندر منتقل ہوتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آئیے, اسے بیان کے لیے ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ کئی مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب نے انکل, اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ خان خان خانہ بھون میں گھٹے ہوئے بہت خانے انکل والے کی خان خان ہے, ان کی حیات میں ان کے سیدھا سیدھا چند خلافہ موجود تھے, اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوتی تھی. ایک موقع پر انہوں نے آپس میں ملاقات کی تو ایک بہت ہی پرانے اور حضرت کے مجمیر خلیفہ نے کہا کہ بھائی میرا عجیب و غریب حال ہے, میں تم کو بتاتا ہوں, تم ذرا بتاؤ کہ میرا حال اچھا ہے یا برا ہے, کیا ہے, کیا کروں. انہوں نے بتایا کہ میں جب یہاں خان خان میں رہنے کے لیے آتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے پیچھے ہوں, اور میں کچھ نہیں ہوں, سارے میرے احباب ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں, حضرت سے خوف سے استفادہ کر رہے ہیں, فیضیاب ہو رہے ہیں, میں ہوں کہ بالکل نکما ڈالا ہے, بس سب سے پیچھے کھٹکتی, باقی سب دروازوں پر ہیں اور جناب ان دونوں راستوں میں ترقی کر رہے ہیں. جس کو سنا ہمارا میرا بھی یاد سنوں کی چیزوں کو بتانا, یہ میرا بھی حال سن چلتے ہوئے سنا دوں, یہ میرا حال بازو سنا میں, یہ ہمارا بھی حال. ابھی ساروں خاتون نے کہا کہ ہم سب کا حال ہے, تو بھائی یہ تو حال ایسا ہے کہ جب سب کا مشترک ہے تو پھر حضرت سے بیان کرو گے, حضرت ہم سے مشترک مریض ہے, کچھ کریں حضرت ہمارا. تو حضرت کے خدو سے وہ لے کر کے یہ حضرات کی خدمت میں پہنچے, اور جا کر کے آگے حضرت ہم کو جب نے حال خاص جا کر سنا, حضرت یہ حال ہے کہ جب ہم خان خان میں آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ہم کچھ بھی نہیں, اور ہم نے کچھ نہیں بن پڑ رہا, بس ہم یوں بس پڑھے ہیں, آرام کر رہے ہیں, کچھ کر کرا دے رہے ہیں, باقی اتنے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, سارے خوب فیضیاب ہو رہے ہیں اور خوب ترقی کر رہے ہیں اور پروازوں پر ہیں. حضرت سن کر فون میرے لیے یہاں اور یہ سن کر سخت حضرت میرے ساتھ میں, تو آپ کیا بولیں, اور یہ خامد بیٹھے ہوئے پھر حضرت سلیم کر کے واپس آ گئے, اور آ کر کے پھر آپس میں بیٹھے گئے, وہی حضرت نے بھی یہ جواب دیا ہے, آپ کیا کریں. اتنے گھر کی اصل بات یہ ہے کہ حضرت سوادوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اور جو لوگ خانقاہ کے اندر آئے ہوئے ہیں ان کے دلوں پر بھی اس سوادوں کا اثر جمیل پڑ رہا ہے, تو کھایا پڑ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جتنے یہاں کے رہنے والے ہیں اور اگلے خدمت میں حاضر بات ہیں وہ بھی سوادوں کے اندر غلط ہو رہا ہے, تو اس مرشد جو ہے وہ خود ہی سوادوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے, لہٰذا اس کی مجلس میں آنے والے اس کی خانقاہ میں ٹھہرنے والوں کا بھی یہی حال ہے, وہ حضرت کے دل کا حق جو ہے وہ پاس رکھنے والوں کا پڑ رہا ہے. اس لیے اصل علاج یہ ہے کہ غرور کا دھونے کا انسان اس سے بھاگ آئے کہ وہ کسی اللہ والے کی خدمت صحبت میں اخلاص کے ساتھ صدق صادق کے ساتھ بس کچھ دیر گزارا کرے, چاہے پانچ منٹ ہو چاہے دس منٹ ہو, بلکہ بعض مطلب آگے دور سے دیکھنا بھی نافع اور مفید ہوتا ہے, اس کے لیے بیان بھی کوئی ضروری نہیں ہے, تقریر کوئی ضروری نہیں ہے, پڑھ کے سنانا سننا سنانا کوئی ضروری نہیں ہے, بس مخصوص پاس بیٹھنا, اس پاس بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل سے دل میں اثر ہوتا ہے. یہ جو مشہور ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, ایسے ہی نال یہاں پر بھی شہر کا رنگ مرید کے اندر منتقل ہوتا ہے, تو کوئی شبہ نہ کرے کہ مرید کا رنگ تو نکل جائے گا پیر کے اوپر, یہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے طور پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شیخ کے ساتھ شامل ہے, اس لیے مرید کے دل کا جو برا اثر ہے وہ شیخ سے کرتا ہے, مرید کا برا اثر شیخ کی برکت سے اتر جاتا ہے. دوپہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول تھا, اور ایک بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا, वो अपने धीरे धीरे बड़ा शर्मिंदा नाजिम हुआ और अपने आप में कहना संभव इच्छु है कि बदलाने का माना है कोई गुनाह तो छोड़ा नहीं है, आज तो हाजिर है, अब तक तो थी कि